अष्टतर श्रीमद्भागवत की कथा का सुनने का फल क्या है? पहले तो अब व्यक्ति अजर अमर बन गया और कृष्ण का प्रेम पाकर के गोलोक वैकुंठ में पहुंच जाता है। उसका जीवन मरण जन्म मरण नहीं होता। तो जिसका जीवन मरण से ऊपर हो गया, जो अजर अमर हो गया, जिसने कृष्ण प्रेम को पाप किया कर लिया और वह परम भक्त यदि है, आप उसको कैसे मार सकते हैं? तो शंकर जी भी मुस्कुरा दिए, वो तो मर नहीं सकता, अजर अमर हो गया, फिर आप मारने की चेष्टा क्यों कर रहे हैं? और भक्तों के प्रति तो ऐसा भाव होना ही नहीं चाहिए यदि भक्त हो गया। पर शंकर जी लज्जित होकर के काला से ये सुखदेव गोस्वामी जी हैं, कोई कहते हैं 12, कोई कहते हैं 16 वर्ष तक अपनी माता के गर्भ में रहे। पिताजी ने कहा, जब आप कौन हैं महाशय जी, आप जो कोई भी हैं माता जी को कष्ट मत दीजिए, अब तो गर्भ से तो बाहर हूँ, भीतर सब आ जाइए, मैं ऐसे नहीं निकलता, माया के राज्य में मैं नहीं निकलूंगा, यहाँ माया है, विश्व में सर्वत्र माया है, मैं इसमें नहीं निकलूंगा। कैसे निकलेंगे? यदि माया को कोई हटा सके तो उसमें निकलूंगा। व्यास जी ने कहा, तो कैसे आप निकलेंगे? मैं हटा देता हूं माया को। आप कौन हैं? मैं व्यास हूं नारायण, आपसे नहीं होगा। यदि कृष्ण आए और वो कह दें कि माया को हटा दूंगा तो मैं मानूंगा। व्यास जी ने कृष्ण की आराधना की और कृष्ण वहां पर स्वयं प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, जी अरे बच्चे, तू गर्भ से निकला, आप कौन हैं? तो मैं कृष्ण हूं। उसने कहा, जी आपके लिए हमारा प्रणाम, मैं आऊंगा तो, किंतु माया में मैं नहीं आना चाहता। कृष्ण ने कहा, जी मैं माया को एक तीक्ष्ण तलवार की धार पर, एक सरसों गिराने पर जितने देर तक अर्थ रखता है उतने देर के लिए माया को मैं हटा रहा हूं, तुम जल्दी चाहो। तो जब ठीक, बस जब ही ऐसा उन्होंने किया और सुखदेव इसमें से गर्भ से निकले। जब जो प्रवेश नहीं हुआ, नारी संस्कार नहीं हुआ, जन्म संस्कार, जात संस्कार जिस चुकाते वो भी नहीं हुआ, अनुपेत पेत कृत्यम वो कुछ भी नहीं हुआ, यंग प्रवचंतम अनुपेत अपेत कृत्यम, उनका कुछ भी नहीं हुआ और वो भगे। व्यास जी ने कहा, इतना योग्य लड़का घर में रहते हुए सारी समस्त जितने भी ग्रंथ हैं, वेद उपनिषद शास्त्र भागवत इत्यादि का श्रवण किया, और योग्य व्यक्ति माया में भी नहीं आया, और ऐसा पुत्र पा करके भी मैं ऐसा दुर्भागा हूं कि ये बन भी जा रहा है। मेरी इच्छा थी कि श्रीमद भागवत का जो पांच इस बच्चे को मैं सुनाऊंगा, किंतु ये तो भाग करके चला जा रहा है। बड़े दुखी हो गए। जब चलने लगे तो वन में जाते हुए हा पुत्र हा पुत्र हा पुत्र कहा, और पीछे से प्रतिध्वनि हुई वन की, हा पुत्र हा पुत्र, कौन पिता कौन पुत्र, हा पुत्र हा पुत्र कह रहा है, मैंने उसको चिढ़ा रही है यह प्रतिध्वनि, कौन किसका पुत्र? सब माया में लगे हुए हैं, एक पिता है कृष्ण, बाकी सब उसके पुत्र और सब वही सबके प्रियतम बंधु भाई सखा सब कुछ है, और जगत में ये सब माया मोह मनो प्रतिध्वनि ने कहा। उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, वो चलते गए, पीछे से व्यास जी भी चलते गए, किसी प्रकार से पुत्र को ले आऊं और पढ़ाऊं श्रीमद् भागवत। थोड़ी देर आगे पहुंचे हैं तो व्यास जी ने देखा कुछ किशोरी अस्त पर आए, एक सरोवर में नंगी स्नान कर रही है। सुखदेव गोस्वामी आगे आगे जा रहे हैं, उनको देख करके कुछ भी उनके हृदय में तनिक भी कोई खोह नहीं हुआ। सुखदेव गोस्वामी पार कर गए तो व्यास जी श्वेत दाढ़ी वाले, श्वेत केश वाले, कितने बूढ़े पड़े, اور وہ لڑکیاں ان کو دیکھ کر کے لجت ہوگا کہ جھٹ تالاب سے نکل کر اور کپڑے پہن کر کے بیاس جی کو آ کر کے دور سے پرنام کیا. بیاس جی نے کہا جب پتریوں میرا لڑکا نوجوان 16 کا بڑا سندر سکان کتنا تیز اس سے نکل رہا ہے, تو اس کو دیکھ کر کے تمہیں لجا نہیں آئی, کوئی سنکوچ نہیں ہوا, کوئی کھوبھ نہیں ہوا تمہارے ہرے میں, اور ہمیں دیکھ کر کے تم لجت ہو گئی, ایسا کیوں؟ تو سکھدیو گوسوامی جی کو پتا ہی نہیں ہے یہ لڑکی ہے کہ لکڑی ہے نہ کیا ہے, لکڑی اور لڑکی میں کوئی بھی ان کے لیے نہیں. سب سمے بھگوت چنتن کرتے رہتے ہیں, سروتر سب میں بھگوان کا درشن کرتے ہیں اور سب بھگوان میں سب جیووں کو دیکھتے ہیں. ایسے پرم بھاگوت وہ ہیں, ان کو جگت کا کوئی بھی سود بوجھ نہیں ہے. آپ نے کیوں پوچھا جب تم لڑکی ہو اور ہمیں دیکھ کر کے لجا نہیں آئی, ان کو دیکھ کر کے لجا نہیں آئی, کیوں پوچھا آپ نے؟ کوئی ہے نا, کوئی بھید تو ضروری ہے استری پروش کا آپ کے اندر میں, کنتو ان کے اندر میں تو یوں بھی کچھ بھی نہیں ہے, سہج ہی پرمہنس ہیں. ایسے یہ سکھدیو گوسوامی جی ہیں, یہ بھاگوت کے ادھیکاری ہیں. جب وہ ون میں چلے گئے تو دیوباس جی نے کچھ بہریوں کو وہ سکھ پکڑنے کے لیے کوشل کر کے ان کو کچھ منتر پڑھا دیا. منتر کیا تھا؟ برہا پیڈم نٹور بکو کرن یو کرنکار بھردواس سمت کپیشم بے جینتی چمالا رنجان وین ردھر سدھیا سوریا گوپتنجا بندارنم سپد رمنم پراوشت ہی سکے. کرشن کا سمد بھاگوت میں کیا بھارتی ون باڑی میں جتنا بھی کرشن کے روپ کا ورنن کیا گیا ہے گوپیوں نے پریم میں بیبس ہو کر کے اس لوک کو پڑھا تھا, اس سے بڑھ کر کے اور کرشن کے سندر مادھوریہ پورن ورنن کا کہیں بھی کوئی شلوک نہیں ہے. تین پائے جاتے ہیں بھاگوت میں, ایک تو شیامم ہرنیہ پریدھی, ایک یہ شلوک نومیتھیتے ابر بپوسے سڑی دمبرائے, اور تیسرا ہے یہ برہا پیڈم نٹور بپو. کنتو تینوں میں بھی یہ سب سے رسمے پرم مدھو کرشن کا سرگ سنگ سنگ سندر یہ بن. سکھدیو گوسوامی جی ان بہریوں کے ان شلوکوں کو سن کر اس شلوک کو سن کر کے مگدھ ہو گئے. انہوں نے کہا اچھا یہ تم کو منتر کس نے سکھلایا؟ وہ ہمارے گرو جی نے سکھلایا. ٹھیک ہے, کل ان سے پوچھ کر کے آنا جس کا یہ سندر روپ ورنن ہے یہ منتر ہے, اس کا گن کیا ہے تھوڑا سا ان سے پوچھ کر کے آنا. وہ بحریے کے جالوں میں بہت سے سکھ پکشی اور بہت سے چڑیا اتیادی پڑ گئی تھی, بڑے پرسن ہوئے, بیاس جی کے پاس لوٹے. انہوں نے کہا یہ ایک لڑکا سنے ملا ننگ دھننگ, بڑا سندر بڑا تیجسوی, اس نے پوچھا جی اس کے گن کیا ہے کس کا یہ روپ ہے؟ تو انہوں نے ان کو بتایا اہو وکیم سنکال کوکم جگھن سیا پایت اپ پسادی لے بھی گتی بھت اچتان تسوہنم کموا دیالو سر. اتنا کو جو کہ بال گھاتنی روٹی پان کرنے والی, بچوں کا من سورب پان کرنے والی, وہ بھی کرشن کو ستن پلانے کے لیے گئی کال کوٹ میٹ ملا کر, اور اس کو بھاتری اچت گتی دے دی کرشن نے, ماتری اچت گتی بھاتری اچت گتی. کتنے بڑے دیالو ہیں وہ, ان کو چھوڑ کر کے جو بھاگا ایسا کون ہے جو دوسرے کا بھجن کرے گا؟ وشیش کر کے برج میں رہنے والے ویکتی, برج میں جن کا جنم ہوا کسی پرکار سے آ گئے یہاں پر شادی وواہ ہوا, انتھا سب سنسار کو چھوڑ کر کے برج میں آئے ہوئے ہیں, کون ایسا دربھاگا ہوگا جو ایسے نند نندن گوپی بلبھ ارادھا بلبھ کرشن کا بھجن نہیں کریں گے, دوسرا کس کا بھجن کریں گے؟ اس لیے بھجن کرنا ہے تو برج میں ایسے شام سندر ارادھا بلبھ کا ہی بھجن سروتم. تو اس طرح سے جب سنا بس جھٹ آکرشت ہو ان کے پیچھے پیچھے چل دیا, اور بیاس جی کے یہاں ہے, بیاس جی کہ یہاں پر سمد بھاگوت کا جو پانچ पठन पाठन किया और अंत में कहते हैं निर्गण्यो अपि परिनिश्चितो, मैं निर्गुण ब्रह्म में, निर्गुण ब्रह्म में परिनिश्चित था, किंतु ऐसी कृष्ण की मधुर लीलाएं हैं, इतनी सुंदर आकर्षक है, आत्मा रामाश्च मुनयो निर्गंथा उपक्रमे कुरुवंता है सुखिन भक्ति इथम भूत हूं। बड़े बड़े सब लोग ये धुरंधर निराकारवादी भी कृष्ण के गुणों को सुन करके आकृष्ट होकर के कृष्ण की लीला कथा को महिमा पर सुन करके सुनते हैं और मैं ऐसे ही निर्गुण ब्रह्म से आकर के कृष्ण की लीलाओं में आकृष्ट हो गया और मैं अब कृष्ण का भक्त हूं। ऐसे सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज जी को ये कथा सुनाई, कैसे सुनाई, किस प्रकार से सुनाई, अब सुना शुभानंद ब्रह्मचारी जी आप लोगों को कथा सुना। आज कुछ विलंब से आरंभ हुआ, कभी कल 10:30 अभी हम लोग 12 बजे तक, आप लोगों को कष्ट ना हो तो आज 12 बजे तक और इसके बाद में भी 4 बजे से बैठेंगे, आप लोग सब ठीक उसी तरह से आ जाएंगे 4 बजे।
उनके श्याम सुंदर के बच्चे स्थल उनको रंजित हो गया है, उन्हें क्या है वैकांत राजा भी केवल आनंद किए, जो उनकी प्रेम और भावना और हृदय की जो सरस आत्मा है जो तिरकाओं पर अंतर में छिपा कर के रहते हैं श्याम सुंदर की, ऐसे अपने हृदय में जो भावना है सरस भावना प्रेम, उस प्रेम को उन्होंने कुमकुम के द्वारा वस्त्र स्थल में उस हृदय को उभार करके व्यक्त कर दिया, समस्त भक्तजनों के सामने राधा बिहारी के जो जी के रूप में विराजमान होकर के और अपने सुहा को विस्तार करते हुए श्रीमती सुहानंद के प्रति जो उनका अनुराग है उसको व्यक्त कर दिया और साथ ही उनका जो विशाल वक्षस्थल कैसा वक्षस्थल है, जो कि नीले आकाश के समान, नवीन बादल के समान या नए नवीन दीवार के समान, ऐसे जो श्याम श्याम स्वरूप है, ऐसे श्याम बादल सर्व विशाल वक्षस्थल स्थल में कौस्तुभ मणि जिसमें केवल रेम से ही ऐसे विशाल वक्षस्थल स्थल में पसीने के धुंध पानी के धुंध जैसे बादल शोभित होते हैं, इसी प्रकार अनुराग और प्रेम की भावना के द्वारा उन पसीनों के धुंध के द्वारा वह शोभित हो रहा है और अनुराग रूपी वह कुमकुम राग रंजित हो रहा है। ऐसे जो श्याम सुंदर है सेवापूर मनुपुर अतुप्रियम सबकी मनोकामना पूर्ण कर सबके प्रिय अनुराग उनके जो में जो एकांत अनुराग प्रेम भक्ति को प्रदान करें, ऐसे उनके जो हृदय के अभिष्ट वस्तु है ऐसे विश्वानंद के चारों में हम सबका अनुराग प्रेम विस्तार कर ऐसी ही कृपा कर जो महाराज ने बताया है कि निगम कल्प करो गलतम फलम
थोड़े देर हो गए खाने को मैं मिले नहीं पंचा कल्प करुगस्य कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महाबदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरक्षिते यं प्रव्रजन्तमनुते तमतेत कृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया गुहाव पुत्रेति सम्मयतया सर्वोभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमां कृष्ण। आज सवेरे से हम लोगों का श्रीमद् भागवत आरंभ हो गया, जिसमें हम लोगों ने संक्षेप में श्रीमद् भागवत का महात्म्य वर्णन किया, एक एक स्कंद पुराण से बतलाया और एक पद्म पुराण से हम लोगों ने बतलाया। ए हल्ला मत करो, हमने कल ये भी बतलाया पद्म पुराण के अंतर्गत जो फल महात्म्य बतलाया गया है वो सर्वसाधारण के लिए जिनको भक्ति का भान नहीं है, ज्ञान नहीं है, उन लोगों के लिए जो अत्यंत अज्ञ जैसे हैं, इस कर्द पुराण वाला जो बतलाया गया है वो भागवत की यथार्थ महिमा बतलाया, कल हमने इसको बतलाया, आज श्रीमद् भागवत हम लोग आरंभ कर परीक्षित महाराज जी की सभा में सुखदेव गोस्वामी भी पधारे हैं। उसके पहले कुछ और बातें हुई हैं, श्रीमद् भागवत का आरंभ कर दिया पहले से ही, किंतु सुखदेव गोस्वामी जी पधारते हैं उसके बाद में। पहले ही उन्होंने वंदना की मंगलाचरण के रूप में, सुखदेव गोस्वामी जी ने जो व्यास जी ने वंदना की, जन्मादस्य जतः अन्यादि करता इत्यादि वंदना, इसके बहुत से हमारे टीकाकारों ने बहुत तरह की व्याख्याएं की, किंतु हमारे चैतन्य चरणानुगत श्री सनातन गोस्वामी जी गोस्वामी और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी जगत को एक नई दिशा दी, जहां पर यह बतलाया गया निगम कल्प करो गलितंग फलम सुगमुखाद अमृत संयुतम, जो रस ही रस है जिसमें छिलके रेशे और कोई भी चीज फेंकने लायक नहीं है, और रस ही रस मत खाओ, तो उसमें जन्मादस्य जतन, इसका अर्थ यदि ये करें कि जिससे जगत का जन्म होता है, जिससे जगत की स्थिति होती है, पालन पोषण जो करता है, और अंत में जगत जिसमें समावेश को चिंता हो जाता है सब जगत का, वो ब्रह्म है, ये ठीक जगता नहीं, क्योंकि ये तो स्थूल सृष्टियां हैं, किसी भी भक्त को लेकर के इससे क्या लेना देना है, जगत कहां से उत्पन्न हुआ है, कैसे है, जो नित्य भगवान के पार्षद हैं, गोप गोपियां हैं, या और अनंत नंदन जी ऋषि इत्यादि हैं, नारद इत्यादि है, उनको इनसे क्या लेना देना, सभी साधारण लोगों के लिए ये जगत की सृष्टि जिससे होती है, उसका पालन पोषण जिससे होता है, और अंत में जिसमें वो विलीन हो जाता है, उसको कहते हैं ब्रह्म। जतो इमानि भूतानि जानते येन जातानि जीवन्ति यत्प्रान्त अभिसंविशन्ति तद्वि जिज्ञास तद ब्रह्म इत्यादि बतलाया है, उन्हीं से जगत की सृष्टि इत्यादि होती है, वही इस विषय में सबसे अभिज्ञ है, जिसमें ब्रह्म इत्यादि मोहित हो जाते हैं, ब्रह्म को भी प्रेरणा देकर के उन्होंने श्रीमद् भागवत इत्यादि की प्रेरणा जिनके हृदय में दी, जिनकी महामाया जोगमाया के द्वारा जल में अग्नि में और मिट्टी में एक दूसरे में अवभाषित होते हैं, दूसरे वस्तुओं की भ्रांति होती है, सत्यम परम धीमहि, ये सब माया के अधीन जो प्रभु हैं वो अपने धाम में निरंतर सब समय लीला विलास में मग्न रहते हैं, मैं उनका नमन करता हूं, सत्यम परम धीमहि उनका मैं ध्यान करता हूं, किंतु रसिक वैष्णव हो ये अर्थ जचता नहीं। यदि श्रीमद्भागवत निगम कल्पतरु के गलित फल हैं तो उन लोगों ने चैतन्य महाप्रभु जी की भावना के अनुसार में उन्होंने इसका अर्थ ये लगाया, जन्म आदि जो जन्म आदि परसस्य जस्मा, आदिरस का जन्म जिसके द्वारा आदिरस कहते हैं श्रृंगार रस को, मधुर रस को, गोपियों के कृष्ण के प्रति जो रस है उसका आदिरस का जिससे जन्म हुआ। यूं तो रस पांच प्रकार के मुख्य और गौण रूप में था, शांत दास्य सख बात्सल्य मधु, ये पांच मुख्य रस और शांत सात ये गौण, हर्ष अर्थ करुण रौद्र भयानक विभक्त। यदि ये कृष्ण के साथ में संबंधित हैं तो ये रस हैं, कृष्ण के साथ में संबंधित नहीं है तो ये रस नहीं। तो जहां पर कि मधुर रस रहेगा वहां पर बारहों रस जरूर रहने के लिए बाध्य, उसमें सब रहे। आदि रस का जन्म जिससे हुआ, किन से हुआ, कभी कहते हैं कृष्ण से हुआ, फिर कहते हैं नहीं कृष्ण से अकेले नहीं हो सकता, राधा और कृष्ण जिनसे यह मधु रस आप दरस प्रकाश, कैसे प्रकाश है, अन्वय व्यतिरेक रूप में मुख्य और गौण रूप में। अन्वय व्यतिरेक क्या है, जब राधा कृष्ण का दोनों का मिलन होता है विलास होता है ये अन्वय है, और जब इनका वियोग होता है तो ये गौण है अथवा व्यतिरेक है। दोनों एक ही रस के दोनों और अनिवार्य पहलू हैं, एक के बिना दूसरा नहीं हो सकता। किसी किसी संप्रदाय में ऐसा माना जाता है कि केवल मिलन ही मिलन है, चैतन्य महाप्रभु जी ने बताया नहीं, मिलन के साथ में वियोग जरूर होगा, वियोग के बिना मिलन कभी वर्तित नहीं हो सकता। श्रीमद्भागवत इत्यादि देखने जैसा प्रतीत होता है, रस में श्रीमद्भागवत में रास के प्रसंग में कृष्ण लीला के अंतर ध्यान हो गए, गोपियां वियोग से मरी जा रही हैं, वो पेड़ों से लताओं से गुलमों से सबसे वो पूछ रही हैं कृष्ण किधर गए, देखा अंत में लीला की अनुभूति में वो स्वयं कृष्ण बन जाती हैं और कहती हैं पुतना को पकड़ लिया किसी एक गोपी को और उनका स्तन काम करने लगे, उनको नीचे गिरा दिया, मैं कृष्ण हूं और ये पूछना है, किसी ने अपने कपड़े को अंगुलियों पर धारण कर लिया और कपड़े फहराने लगी, कल मैंने गोवर्धन को धारण किया देखो तो, और सब मेरी ललित गति तो देखो, मैं कैसे हंसता हूं, मेरे कटाक्ष कैसे हैं जरा देखो तो, ये सब चीजें आने लगी, पागल हो जाती है कृष्ण के, और उसके बाद में कृष्ण से मिलन होता है तो वो मिलन बहुत आनंददायक होता है। श्रीमद्भागवत में इसका वर्णन है, यदि हम दोनों पहलुओं को नहीं मानेंगे तो प्रेम का एक पहलू नहीं रहेगा, इसलिए आदरस श्रृंगारस का ये कृष्ण और राधा दोनों के द्वारा हुआ, अन्वय और प्रतिरोध ये दोनों ही इस विषय में अभिज्ञ हैं। यहां तक कि कृष्ण है रस राज और श्रीमती राधिका क्या है महाभाव स्वरूप, और जब दोनों ये मिलते हैं तो रसराज महाभाव उत्पन्न हो जाता है, जो आज तक कभी नहीं उन ये उपलब्धि हुई। चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव में चैतन्य महाप्रभु ने राय रामानंद को इस चीज को दिखलाया और उसकी स्मृति कृष्ण लीला में राधा और कृष्ण से जुड़ी, इसलिए रसराज महाभाव। श्रीमद्भागवत में ऊपर से तो शब्दों के रूप में उल्लेख नहीं है किंतु है वहां, इसलिए जिससे ये दोनों होते हैं वो ब्रह्मचर्य के हृदय में पहले बतलाया गया, उनकी प्रेरणा देते हैं। यहां कहते हैं कि वो नहीं रस ब्रह्म सुखदेव के हृदय में जिन्होंने उत्पत्ति की, तेने ब्रह्म हृदया जब आद कबे मुहिम से जब सूर्य, तेने मैंने विस्तार किया किसके हृदय में, यदि कृष्ण और राधा जी दोनों सदया बतलाए ना, जो राधा जी के ये सुख थे बड़े प्रिय, उनके हृदय में श्रीमदभाग रसमयी है उनकी स्तुति की, और तब इसको सुखदेव बोलने में समर्थ हुए, अन्यथा ये सब चीजें नहीं बोल सकते थे। इसलिए तेने ब्रह्म हृदय ब्रह्म सुख हृदय रस ब्रह्म, रस ब्रह्म को सुख के हृदय में स्तुति की, और तब ये रस ब्रह्म को निगम कल्प सौर गलितम फलम सुख मुखाद अमृतम तब यू करता है, अन्यथा ये संभव नहीं। भगवान को कौन जान सकता है, भगवान की लीलाओं को भागवत को कौन जान सकता है, जिसको वो जना दे से ही जाने जैसे जनाए, दूसरा नहीं जान सकते। श्रीमद भागवत में भी ऐसा बतलाया, भगवान जिनको जना देते हैं अपने भक्तों को वही उनको जान सकता, अन्यथा नहीं जान सकता। इसलिए जना की तत्व भगवान महिमो न चंद एक अपनी चीरल विचिन्न, चीरकाल तक ब्रह्मा खोजते रहे आदि पाने के लिए भगवान का, और कमल लाल से ऊपर जा रहे हैं नीचे कोटि करोड़ों जन्म लग गए, अब सिर्फ ऊपर में आए और धूम से रह गए, उनको कुछ पता ही नहीं चला, अंत में तप किया भगवान ने सरस्वती के द्वारा, उनको गोपाल मंथन दिया और स्वयं बंसी के नाद से उनको काम गायत्री दी, और तब कहीं जाकर के वो कुछ समझ सके, अन्यथा नहीं समझ सके। इसलिए तेने ब्रह्मरिदा जो आद कब ए मुहियां से जब आद कभी ये सुखदेव गोस्वामी जी मुहियां से जब सूर्य, जिसमें सब देवता लोग नित्य मुक्त महापुरुष भी मुक्त हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं। ब्रह्मा हमारे संप्रदाय के गुरु हैं आदि हैं, किंतु मुहियंती वो तो केवल सखाओं के लीला में ही भूल गए, समझ नहीं सके। कृष्ण को साधारण एक बालक सा समझ लिया और उनको परीक्षा करने के लिए गए, उनकी और लीलाओं को देखना चाहा, एक वर्ष तक उनको भगवान ने घुमाया, ये सब देखते हैं, ब्रह्मा को घुमाया, शंकर को घुमाया है, वरुण को घुमाया है, जम को घुमाया, मैंने ऐसा कामदेव को घुमा दिया, जो कामदेव सबकी नाक में नकेल देकर के घुमाते हैं, उस कामदेव को भी उन्होंने नाक में नकेल देकर के चारों तरफ में घुमा दिया। ऐसे ये कृष्ण और राधा जी की लीला है। इसी तरह से सब अपने धाम में जो कि सब समय इन लीलाओं के साथ में विलास करते हैं, दोनों समस्त शक्तियों के द्वारा परिवेषित होकर के ऐसे कृष्णचंद्र जी का मैं और राधा जी का ध्यान करता हूं यहां से आ। किंतु यह कैसा है, धर्म प्रभृत कई तो वो अस्त्र परमो निर्मात्रानंतान, ये भागवत कर्म कांड नहीं है, स्मार्थ कांड नहीं है, ज्ञान कांड के द्वारा समझ में नहीं आएगा। श्रीमद भागवत में विशुद्ध परम सत्व निर्मल परमहंसों का धर्म का वर्णन किया गया, साधारण लोगों के लिए नहीं समझ सकते हैं। ये पोस्ट ग्रेजुएट का जो इस लाइन में हो धर्म के मामले में, उन लोगों के लिए है, साधारण लोगों के लिए नहीं, किंतु हम उसकी टांग खींच कर नीचे लाना चाहते हैं कर्म मार्ग में, ये कर्म मार्ग इसे तो सुनने से श्रीमद भागवत कर्म मार्ग में कहां चला जाता है, करोड़ों सब लोग हमारे पूर्वज सब जो जिसने सब सुन करके ऋषि मुनि से लेकर के देवता तक सब कृतार्थ हो जाते हैं, फिर जगत में माता के गर्भ में आकर के उसका स्तन का दूध नहीं पीना पड़ता, ऐसा ये श्रीमद निरस्त कुहुकम, ऐसे हैं यहां तक कि मुक्ति जैसे चीज को निरस्त कुहुकम, ये कुहक है, मिथ्या जाल है, इन सबको दूर करने वाले श्रीमद भागवत ने केवल कृष्ण प्रेम की, कृष्ण प्रेम में भी वो के राधा जी का प्रेम, श्रीमद भागवत कृष्ण का ग्रंथ नहीं, कृष्ण के लिए तो बहुत से ग्रंथ बने हैं, ये केवल मात्र राधा जी का और गोपियों का ग्रंथ। जब हम खूब अच्छी तरह से विचार करते हैं तब कृष्ण किसके लिए कह रहे हैं? कृष्ण की सभी वंदना करते हैं, वो कृष्ण कहते हैं नपारे हम निर्बद्ध संयुजान, मैं उनका ऋणी हूं, कोटि जन्म लेकर के दे दाओ जैसे आयु भी, मैं उनका ऋणी हूं। किसके लिए कह रहे हैं वो भगवान कृष्ण? उद्धव की तो बात छोड़िए, बंदे नंद ब्रजे श्रीनाम आशा भो चरण ऋण जुसाम हम श्याम, ये सब कह रहे हैं। इसलिए श्रीमद्भागवत का तात्पर्य किसी गोपी प्रेम में, विशेष करके राधा जी के प्रेम में निहित है। विशेष करके ये स्थान भी सेवा कुंज है, उसी की यही महत्ता है। कृष्ण उनके चरणों में स्थिर रख करके और क्षमा मांग रहे हैं, उनकी कृपा की भिक्षा कर रहे हैं, इसलिए कृष्ण छोटे नहीं हो गए। ऐसा मत समझे, ये प्रेम की ही ऐसी महिमा है, वो परब्रह्म भी ऐसा प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं। इस श्रीमद्भागवत की ये कथा अभी हम लोग सुनेंगे। अभी धीरे धीरे शिष्य प्रकरण और सब चलते हुए अंत में दशम स्कंध में ये सब बातें अच्छी तरह से हम लोग स्पष्ट करेंगे। अभी आप लोग धीरे धीरे सुनेंगे। नारद जी भगवान के एक बार दर्शन पाया और इसके बाद में विरह में डूब गए। भगवान ने आदेश दिया, जब तक तुम्हारे अंदर में अनर्थ है, काम क्रोध लोभ मोह, तब तक मैं किसी को दर्शन नहीं देता। अब मैं दर्शन नहीं दूंगा, अब मेरे नामों का कीर्तन करते हुए विश्व में सर्वत्र तुम विचरण करो। समय आने पर काल आएगा, उसके सिर पर मस्तक पर पैर रख करके और तुम हमारे पास नहीं आएगा। तो जिस प्रकार से वो कीर्तन करते थे, हम लोग वैसे ही अज्ञ हैं, बाल हैं, हमारी टोली बाल की है, बालकों की टोली है, अज्ञों की टोली। इसमें कृष्ण को जरा बुलाओ तो कैसे आते हैं हमारी बाल टोली में? कितने लोग थे सब कीर्तन में प्रमत्त हो गए। अभी ब्रज की कोकिला जी आई हैं
कामों की निर्जन ये हुआ
पुत्रमत्र स्वरूपं रूपं कस्या गजवुरीपुरीं माथुरीं गोत्वाचिं राधाकुण्डं गिरिभवमहो राधिका माधवासं प्राप्तो यस्य प्रतिकया ते गुरुं संनतोऽस्मि। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशव इति नामिने अतिमात्र चरित्राय स्वासितानंच पालिने जो दुःखे सदार्ताय नाम प्रेम प्रदायिने वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महाबदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नमने गौरस्तिते नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै सदालयै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं न मां चरणान्तिके भक्त्या विहीनापराधलक्ष्यै चित्तास्य कामादितरङ्गमध्यै कृपामयीं त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्।
परमाराध्यतम गुरुपाद पद्म की कृपा से नृसिंह जी की कृपा से सर्वोपरि किशोर किशोरी जी की कृपा से श्री चैतन्य महाप्रभु जी की कृपा से हम लोगों का श्रीमद्भागवत प्रवचन पहला दिन निर्विघ्न रूप से और बड़ी अच्छी तरह से बीती। मैं तो उसमें कुछ सुलक्षण देख रहा हूँ। जब परीक्षित महाराज जी प्रायोपवेशन के लिए गंगा के किनारे तट पर बैठे तो 88,000 ऋषि लोग वहां पर बिना बुलाए बिना किसी निमंत्रण के उपस्थित हो। उन्होंने किसी को भी निमंत्रण नहीं दिया था, न व्यास को दिया, न नारद को दिया, न सुखदेव गोस्वामी जो पाठ करेंगे उनको भी नहीं दिया, किसी को भी नहीं दिया। और उलोजाने कैसे जान गए और समस्त भारतवर्ष से क्या समस्त विश्व से कैस्पियन सागर से कश्यप जी भी पहुंच गए, कहां कहां से सब लोग वहां पर पहुंच गए। एक मिनट की देर न लगी थी वो बैठे और साथ साथ में गए। उन्होंने कहा जो ये अभिशाप जो मुझे मिला ये कौन कहता है जो अभिशाप है। भगवान का दर्शन करना सहज है किंतु ये भगवान के जो परम भक्त त्रिकालदर्शी जिनके देखने से ही सब कुछ पवित्र हो जाता है, जिनके स्मरण करने से पवित्र हो जाता है, ये ऋषि मुनि लोग यहाँ पर आ गए जिनके दर्शन से ही भवबंधन दूर हो जाता है, कृष्ण का प्रेम लाभ हो जाता है, आज ये बिना बुलाए सब आ गए हमको दर्शन दे रहे हैं, तो ये कहां भी संपात हुआ, ये कभी भी अभी संपात। इसमें
नारद जी, पराशर जो व्यास के भी पिता और गुरु हैं, वशिष्ठ जी जो व्यास से भी बहुत पहले सतयुग से हैं, मरीचि इत्यादि ऋषि लोग हैं, गौतम इत्यादि ऋषि हैं जिनका कभी भी विनाश नहीं होता, अजर अमर ये लोग हैं, सब वहां पर उपस्थित हो गए। कितने सौभाग्य की बात, तो मैं समझता हूं कि परम सौभाग्य की बात है कि इतने ऋषि मुनि लोग जो श्रीमद्भागवत इत्यादि के भी फल हैं, भगवान के भगवान की आराधना का फल ऐसे संतों का मिलना आज अनायास ही मिल गए। इसलिए आज हमारा परम सौभाग्य, हम भी देखते हैं बिना बुलाए ही मथुरा और वृंदावन के अच्छे अच्छे लोग, विद्वान, भक्त, कीर्तन करने वाले लोग, जिसमें सहज ही समागम नहीं होता उन लोगों का। हजार आप निमंत्रण दीजिए, हजार रुपये भी दीजिए तो नहीं आएंगे। और देखिए ये अनायास ही बिना निमंत्रण के भी ऐसे लोग सब, मैं समझता हूँ जरूर कृष्ण जी भी, राधा जी भी, गोपियाँ भी यहाँ पर सब सुन करके कृपा कर रही हैं। वो सब उनका भी वरद हस्त है इसमें। समस्त भक्त लोग यहाँ पर हैं, ब्रजभूमि है, कितना हम लोगों का सौभाग्य है। इसलिए मैं आप लोगों के और अपना मैं सौभाग्य का वर्णन नहीं कर सकता। परीक्षित महाराज बैठे हैं और व्यास गद्दी पर उन्होंने स्नेह करके बैठा दिया अपने नाती जैसे, अपने गुरु के शिष्य का शिष्य का शिष्य उनको बैठा दिया। नारद जी बैठे हैं, वशिष्ठ जी बैठे हैं, हरित गौतम और उनके गुरु के गुरु नारद जी और व्यास जी भी बैठे हैं, सब लोग वहां पर बैठे हैं। अपरीक्षित जी कथा कह रहे हैं। अच्छा ये बतलाइए, गरिमा की दृष्टि से, भक्ति की दृष्टि से नारद जी का वैशिष्ट्य है न सुखदेव गोस्वामी का? 50 जन्म तक सुखदेव गोस्वामी को नारद जी कृपा कर सकते हैं और वो बैठे हुए और कहेंगे तुम्हारी कथा को। इसलिए मैं समझता हूं कि इन सताओं को हम लोग कम न समझें। इसमें बड़े बड़े रसिक होंगे, रसिकानी भी होंगी, बड़ी बड़ी वैष्णव भी हैं, वैष्णवी भी हैं, वो कम जानने वाली नहीं है और न है। बेटी मधु ने तो श्रीमद्भागवत पर PhD और क्या क्या कर लिया। यदि इसको हम बैठा दें तो सचमुच में अद्भुत वो कर देगी। ऐसे ही यहां पर और भी सब लोग उपस्थित, इसलिए श्रोता लोग कम हैं और वक्ता ही बड़े हैं, ऐसी बात नहीं। उस सभा में यदि मैं रहता जाता जिस सभा में, तो मैं तो पहले नारद जी को प्रणाम करता, व्यास जी को प्रणाम करता जो श्रोता थे, और वशिष्ठ इत्यादि सब लोगों को प्रणाम करता, तो सुखदेव जी गोस्वामी जी को पीछे करता उस सभा में। इसलिए श्रोता लोग जिनके दर्शन करने से ही हरि कथा अपने आप आती है, वो श्रोता लोग भी धन्य है। परीक्षित महाराज जी श्रोता है, सुखदेव जी वक्ता है, ऐसा मत समझ लेना कभी कदापि जो सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज जी कम हैं और वो सुन रहे हैं, ऐसा कदापि मत करना। हम समझते हैं कि सुखदेव गोस्वामी को यह इस जन्म में ये सौभाग्य नहीं था जो कृष्ण की गोदी में खेलें, किंतु ये परीक्षित महाराज जी का सौभाग्य था कि नहीं, कृष्ण की गोदी में खेलें, उनका लालन पालन किया। जगत चुंबन करता है कृष्ण का, और वो चुंबन कर रहे हैं परीक्षित महाराज जी गोदी में, लालन पालन कर रहे हैं।